नमस्कार साथियों, आप सुन रहे छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी। छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी के लिए मैं दिनकर पातुकर। आज मकर संक्रांति के अवसर पर हमारे साथ रूबरू होने जा रहे एडवोकेट मधुकर जी गायकवाड़। नमस्कार सर जी।
नमस्कार सर। नमस्कार, आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आपका मंगलमय हो जी।
सर जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष में मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया जाता है और यह पर्व अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, क्योंकि हम छिंदवाड़ा जिला महाराष्ट्र से लगा हुआ होने से यहाँ पर मकर संक्रांति पर्व पर एक विशेष तरीके से मनाया जाता है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि मकर संक्रांति पर्व मनाने के पीछे क्या कारण है।
देखिए सर, ये एक्चुअली ये त्योहार जो है ना, मतलब भारत में तो सभी जगह मनाते हैं इसको, बंगाल में भी मनाते हैं, आंध्रा में भी, महाराष्ट्र में भी, लेकिन इसके पीछे के कारणों में यदि सबसे बड़ा रीजन देखा जाए तो ये, अभी देखिए ठंड से हम लोग मुक्त होके गर्मी की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे शारीरिक रूप से बदलाव होता है, तो शारीरिक रूप से जब बदलाव होता है तो शरीर को आने वाले ऋतु के हिसाब से परिवर्तित करने के लिए हम कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो तिल और गुड़ का जो सेवन है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। एक तो स्वास्थ्य की दृष्टि से, दूसरा जो नई दुल्हन जो आती है तो समाज के साथ उसको रूबरू कराने के लिए जब इस मतलब महिला जो हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम करती है, तो उस हल्दी कुमकुम के कार्यक्रम के अंतर्गत वो नई बहुओं को समाज के जो वर्ग के लोग हैं वहाँ उनका परिचय कराया जाता है, ताकि भविष्य में उनको किसी तरह की विपरीत परिस्थिति में समाज का सहयोग मिल सके, वो अपनी बात किसी से कह सके। साथ ही साथ महिलाओं को इसके माध्यम से थोड़ा सा अपना सजने सवरने का एक मौका मिलता है, और इससे सोशल कनेक्टिविटी बढ़ती है समाज में। थोड़ा सा घर से बाहर जब महिलाएं निकलती, क्योंकि पूरा समय तो उनका घर में जाता है, लेकिन घर से बाहर जब वो हल्दी कुमकुम के लिए जाती है, एक सोशल कनेक्टिविटी बनती है, साथ साथ थोड़ा सा मन प्रसन्नता से उनके स्वास्थ्य पे भी उसका असर पड़ता है। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कारण उनके उसके मनाने के पीछे है जी।
सर जी, जैसा कि मकर संक्रांति पर विशेष तौर पर आपने खाद्य पदार्थ की बात की, तिल गुड़ के साथ मूंगफली के दाने और साथ ही साथ पेंडी नामक जो आलू की तरह एक कंद होता है उसका भी सेवन इस त्योहार पर होता है, तो हम आपसे इस अवसर पर जानना चाहेंगे कि मकर संक्रांति मनाने के पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है।
नहीं, मैंने अभी जैसे पहले प्रश्न के उत्तर में बताया ना कि अभी जो मौसम बदलाव हो रहा है, मौसम बदलाव के साथ साथ हमको अपने शरीर को उस आने वाले मौसम के हिसाब से ढालना होता है, तो हम इस तरह, क्योंकि आप देखिए भारतवर्ष में जितने भी त्योहार मनाए जाते वो साइंस विज्ञान से जुड़े हुए हैं और विज्ञान स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, तो स्वास्थ्य के दृष्टि से ये त्योहारों की व्यवस्था, जैसे देखिए हम लोग जो पेंडी जो खाते हैं तो वो एक्चुअली जड़ टाइप जड़ चीज है, उसमें कई सारे पोषक तत्व रहते हैं, जब हम उस पोषक तत्व को कुचल के दूध के साथ खाते हैं तो उससे हमारे शरीर में प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ती है, और साथ ही साथ जब तिल को खाते हैं उसको गुड़ के साथ मिला के, तो इससे हमारे पेट से संबंधित सारी, क्योंकि जब आप तिल खाते हैं तो पेट जो है ना बहुत अच्छे से साफ रहता है, और सारी बीमारियों की जड़ जो है, मुझे ऐसा लगता है हमारा पेट है तो उसको स्वस्थ रखने के लिए, और उसमें वो तेलीय पदार्थ होता है, तेलीय पदार्थ जो ठंडी में हमारे अंदर जो सूखापन आ जाता है, चमड़ी हमारी सूखी सूखी टाइप की हो जाती है, तो तिल खाने से उस चीज की कमी पूर्ति हो जाती है, और ये एक विटामिन की श्रेणी में ही आता है, तो उसके स्वास्थ्य पे बहुत असर पड़ता है, ये उसका वैज्ञानिक कारण हो सकता है मुझे ऐसा लगता है।
सर जी, जैसा कि आपने अपने वक्तव्य में कहा है कि इस मकर संक्रांति के पर्व पर सामाजिक सरोकार जैसी परंपराएं निभाई जाती है, देखने में आया कि मकर संक्रांति पर छोटे बच्चों की हूल भी की जाती है, जिसमें बेल ऊख और वगैरह वगैरह अन्य फल होते हैं, तो इससे संबंधित अपनी राय दीजिए सर।
सर देखिए, ये मेरा कहना है कि जो भारत में जितने भी त्योहार है ये सामाजिक संबंधों के निर्धारण के लिए, जैसे देखिए छोटे बच्चों की जो भूल की जाती है तो उसमें सभी मतलब मोहल्ले की जितनी महिलाएं उसको आमंत्रित की जाती है, बच्चों को आमंत्रित की जाती है, तो अभी जो आधुनिक स्वरूप है वो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक वाला है, लेकिन जो पुरातन परंपराएं चल रही उसमें ये सारी चीजें नहीं थी, गौन थी ये। तो उस समय सोशल कनेक्टिविटी कैसे की जाए, क्योंकि देखिए पूरे समाज सभ्यता का आधार जो है हमारी संस्कृति है, और संस्कृति जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की आवश्यकताओं से जुड़ी है, और खास करके भारत जहाँ कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाली व्यवस्था है, वहाँ पे पहले वस्तु विनिमय का माध्यम था, तो वस्तु विनिमय के माध्यम के अंतर्गत कहीं ना कहीं कृषि से जुड़ी हुई चीजों को ज्यादा सामने लाया जाता है, तो ताकि रोजगार का सृजन हो सके और कृषकों की आय बढ़ सके। तो ये उसके पीछे अर्थव्यवस्था प्लस सामाजिकता भी है। दूसरी चीज इसके पीछे एक धार्मिक दृष्टिकोण भी ये है कि जब आप ये सारे आयोजन करते तो कहीं ना कहीं ईश्वर को साक्षी मान के कि ईश्वर के प्रति एक थैंक यू, क्योंकि मेरा कहना है कि हमारे साथ जो भी गतिविधियां आती है, जो उपलब्धियां होती है, उसके लिए पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड को थैंक यू अवश्य कहना चाहिए, क्योंकि जिस चीज को हम लोग थैंक यू कहते हैं वो चीज हमारे पास पुनः भरपूर मात्रा में उपलब्ध होती है। तो ये भगवान के प्रति, अपने समाज के प्रति, परिवार के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक माध्यम भी है ये।
सर जी, जैसा कि आपने अभी महत्वपूर्ण बातें जो समाज में मकर संक्रांति के पर्व पर शुरू से चलती आ रही उस पर अपनी राय दी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मकर संक्रांति पर युवा वर्ग पतंग बहुत अधिक उड़ाते, तो पतंग उड़ाने के पीछे क्या कारण है?
देखिए ये एक्चुअली अभी क्या हो रहा है कि अभी का जो जैसे अभी 14 तारीख के बाद सूर्य जो है उत्तरायण मतलब बढ़ने लगता, कहते हैं ना दिन जो है दिन दिन बढ़ जाता है, और ये मकर संक्रांति के उत्सव के रूप में जैसे गुजरात में एक पतंग महोत्सव होता है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि जो उसमें जो धागा यूज किया जाता है वो चाइना मांझा, वो घटनाओं को बहुत ही बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहा, कईयों की गर्दन कटती है, हम लोग को सावधानी रखना पड़ेगा। और खास करके उसमें जो जिस तरह का पदार्थ इस्तेमाल किया जा रहा है उससे कई बार उंगलियां भी कटती, ये हमको ध्यान रखना। उत्सव मनाना है लेकिन उत्सव में हमको अपनी मर्यादा का भी ध्यान रखना है, सुरक्षा का भी ध्यान रखना है, और साथ ही साथ हम लोग इसको किसी खुले मैदान में सुरक्षा के साथ उड़ाएं, अपने हाथों को सुरक्षित रखें, और ऐसे सड़क किनारे कहीं ना किले, क्योंकि इसमें कई बार वाहन चालकों के साथ बड़ी दुर्घटना हुई है। तो उत्सव मनाएं लेकिन मर्यादा के साथ, सावधानी के साथ मनाएं। और ये जो पतंग उड़ाने के पीछे का है, क्योंकि अभी देखिए जैसे मौसम चेंज हो जाता है तो हवा हल्की होना शुरू हो जाती और हवा का दबाव बनना मतलब रिक्तता की स्थिति बनती है, तो उसको पतंग उड़ाने में बहुत महत्वपूर्ण मदद मिलती है, क्योंकि अभी हवाओं का जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे हवा हल्की हो जाती है, और जो हवा हल्की हो जाती है तो ठंडी क्षेत्र की हवा उस तरफ बहने लगती है, तो दाब का एक क्षेत्र बनता है, उस दाब के क्षेत्र में पतंग उड़ाने में हमको बहुत मदद मिलती है, इसलिए इस समय हम लोग पतंग उड़ाते हैं।
सर जी, आपने बहुत अच्छी बातें आज इस मकर संक्रांति के पर्व पर आपने कही। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति, हालांकि इस वर्ष मकर संक्रांति 2 दिन मनाई जा रही है, कहीं पर 14 जनवरी को मनाई जा रही है तो कहीं पर 15 जनवरी को, और आज मकर संक्रांति के अवसर पर आप संतों की जन्म स्थली संत श्री हीरामन महाराज, संत श्री वाताजी महाराज के जन्म स्थली पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामाकोना द्वारा आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर में आप गए, बच्चों से मिले और बच्चों को प्रेरणात्मक बातें बताई, तो वहाँ के अनुभव आप साझा कीजिए।
वहाँ का अनुभव बहुत अच्छा लगा। जो NSS में हम लोग बच्चों के अंदर एक संस्कार ढालने की जो परंपरा श्री नाचनकर सर के माध्यम से, आप जैसे दिनकर जी आपके माध्यम से, और जो PTS गुरवे जी है, ये मतलब मैंने आज वहाँ विषय रखा था कि जो परिवर्तन के पुरोधा है आप लोग, क्योंकि परिवर्तन के लिए भीड़ की आवश्यकता नहीं होती, 2-4 लोग सामने आते वही समाज के अंदर बदलाव लाते, फिर भीड़ उसके साथ मिलती। तो दिनकर जी आप हो गया, योगेश जी हो गए, PKS गुरवे साहब हो गए, नाचनकर सर, तो ये आपके द्वारा समाज के अंदर परिवर्तन, क्योंकि पीढ़ी जो है युवा पीढ़ी आने वाले समय में देश के भविष्य होते, तो उनको हम लोग संस्कार, क्योंकि उनके कार्यक्रम के माध्यम से मैंने देखा है कि उनके अंदर देशभक्ति की भावना जगाई जाती है, साथ ही साथ उनमें अंदर श्रम से मतलब काम करने की क्षमता जगाई जाती है, स्वच्छता के प्रति उनको जागृत किया जाता है, उनके जीवन को अनुशासित, क्योंकि सुबह उठना, इतने बजे प्रार्थना करना, इतने बजे, ये जो चीजें हैं ये उनके संपूर्ण विकास से जुड़ा हुआ मसला मुझे लगा वहाँ पे, और ये बहुत अच्छी परंपरा, बहुत अच्छे संस्कार, बहुत अच्छे उनके अंदर रीति रिवाज डालने की आप कोशिश कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात विभिन्न बौद्धिक सत्रों के माध्यम से आप लोग जो कार्यक्रम वहाँ करवा रहे हैं बच्चों को अलग अलग क्षेत्र के लोगों से उनके विषय को जानने समझने में मदद मिल रही, और इस माध्यम से उनको अपने निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। वो अपने रोजगार के लिए भविष्य में, मतलब अपने खुद के रोजगार कैसे स्थापित कर सकते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में अपने विश्लेषणात्मक पहलू को जब वो जानते हैं तो एक नई अवधारणा उनके मन मस्तिष्क में आती है, उनका मनोबल बढ़ता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आज मैं जैसे गया तो उनको यही बातें कहा कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में थोड़ा सा बदलाव यदि करें तो हम बड़ी उपलब्धियां अर्जित करते हैं। तो आप लोग इतना अच्छा आयोजन कराते हो, खास करके आप कन्हान के संरक्षण के लिए जिस तरीके से प्रयास कर रहे हो, और कन्हान के प्रति आपका जो सामाजिक दृष्टिकोण है, आप लोगों के बीच में जाके उनको जगाते कि वहाँ जो अवैध रेत उत्खनन हो रहा है, खनिजों का उत्खनन हो रहा है, और किस तरह से हमारा पर्यावरण को क्षति हो रही है, और आने वाले समय में यदि इस तरह से रेत उत्खनन, खनिज उत्खनन जो अवैध तरीके से होता है, नदियों के प्रवाह मार्गों को परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो चीजें हैं ये बहुत, मुझे ऐसा लगता है, गलत हो रही। लेकिन आप लोग समाज के बीच में जाके वास्तव में परिवर्तन, युग प्रवर्तक के रूप में आप काम कर रहे हैं। मैं आपको युग प्रवर्तक कहूंगा, और एक युग प्रवर्तक की जिस तरीके से भगवान कृष्ण ने कौरव और पांडव के बीच के समय में अर्जुन को जो उपदेश दिए थे, उस तरह के उपदेश आप समाज में जाके समाज को जागृत कर रहे हैं, और हमारी जो जीवनदायिनी जो कन्हान है उसको एक नया पुनर्जन्म देने की कोशिश कर रहे। क्योंकि जिस तरीके से रेत का वहां से परिवहन हो रहा है, अवैध उत्खनन हो रहा है, उससे एक तो पर्यावरण प्रदूषित भी हो रहा है, साथ ही साथ पानी के लेयर की जो मात्रा है वो दिन ब दिन घटती जा रही है। आने वाले समय में पूरे हमारे संसार अंचल के क्षेत्रों के सामने पानी की समस्या खड़ी हो सकती है, इससे हमारी कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। लेकिन आप जन जन के बीच में जाके परिवर्तनकारी युग प्रवर्तक बन के, खास करके आपने एक ऐसी श्रृंखला पकड़ी युवाओं को, जिसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप हम लोगों को बुला के इस तरह का काम करवाने में हमारी भूमिका लेते हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जीकेएस गुर्वे जी, गौतम जी, नाचनकर सर, आप सभी का, कि आप समाज को एक नए सिरे से, एक नए इनोवेशन के तरीके से जगाने की कोशिश करें। जी
सर जी, जैसा कि हम मकर संक्रांति पर बात कर रहे हैं, और मकर संक्रांति में नदी स्नान का भी बहुत अधिक महत्व है, और कहते हैं सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, जो लोग गंगा सागर नहीं पहुंच पाते वो अपनी स्थानीय नदियों में ही स्नान कर पुण्य लाभ कमाते, ऐसी मान्यता है। क्योंकि आपने भी अवैध उत्खनन पर भी बात की, तो आज मकर संक्रांति के पर्वों पर आप मोबाइल वाणी के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे नदी संरक्षण और संवर्धन की दिशा में?
देखिए साहब, मैं अभी कई बार मैं कन्हान नदी को खास करके विशेष रूप से देखा हूँ, मैं उसके किनारे से कई बार गया हूँ, और वही देखने के लिए जाता हूँ कि वहाँ किस तरीके से उसका, मतलब ऐसा लगता है कि उसको रेता सुर जो है ना, बिल्कुल इस तरीके से खनन कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि प्रशासन है भी कि नहीं है, केवल कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में प्रशासन है क्या, ऐसा लगता है। लेकिन कानून कहाँ है? इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो कानून, वहाँ कार्रवाई क्यों नहीं होती? रेत इस तरीके से निकाली जाती है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है, तो इससे क्या होगा? ठीक है, आप कुछ लोग उसको रेत का उत्खनन करके बहुत सारा धन अर्जित कर लेंगे, लेकिन जो आप लोग धन अर्जित करेंगे उसको लूटने वाले भी पैदा हो जाएंगे। क्योंकि किसान खेती मारी जाएगी, मजदूरी मारी जाएगी, तो वही लोग आपको लूटेंगे। तो जो 1857 की क्रांति में, रूस की क्रांति में क्या हुआ था, जब आप रोटी नहीं दे पा रहे थे तो वहां की रानी कह रही थी कि ब्रेड खाओ, तो जब उन्हीं लोगों ने सत्ता को पलटाया था, तो भूख की आग बहुत खतरनाक होती है, और हम उस भूख की आग को तैयार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं अभी। तो नदी के लिए केवल प्रशासन के ऊपर निर्भर न रहे, अपने स्तर पर जितना हम केवल बातचीत ही कर ले तो वही बहुत है। एक एक नागरिक यदि परस्पर अपनी चौपाल में, अपने गाँव में ऐसी बातचीत करे, एक एक दूसरे को परिचित करे, तो उससे संगठन को मजबूती, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे ना, संगठित रहो और संघर्ष करो, और शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो हम कानूनी जो शिक्षा है उसको तो ठीक है, मानना ही है, लेकिन हम एक दूसरे के बीच व्यावहारिक स्तर पर शिक्षा की बात करके लोगों को जोड़ के और नदी के संरक्षण के लिए प्रयास करें। जैसे आप लोग वहाँ जो रामाकोना में जो घाट है उसकी सुरक्षा के लिए जो आप कार्यक्रम कराते हैं, और लोगों का जिस तरीके से आपके साथ जुड़ाव हो रहा है, एक मतलब एक समूह बनते जा रहा है, ये बहुत बड़ा संकेत है नदी संरक्षण के प्रति, और आज की पीढ़ी को इसके लिए जगाना जरूरी है। क्योंकि जिस हिसाब से जल स्तर घट रहा है पानी को लेकर, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि पानी को लेकर आने वाले समय में तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, तो वो परिस्थिति हम खुद ही तैयार कर रहे हैं, पर्यावरण को क्षति पहुंचाते। जी
बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका, कि आपने मकर संक्रांति के पर्व पर छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी के माध्यम से महत्वपूर्ण बातें कही और आपकी बातों से स्पष्ट हुआ कि अध्यात्म के माध्यम से यदि राष्ट्र निर्माण में योगदान देना है तो हर व्यक्ति को अपने घर से निकलना होगा और अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी की ओर से समस्त श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं।
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।